जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Jagannath, Jagannath, Balare, Subhadra, Jaya, Jaya, Jagannath. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya, Jaya. संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ किम्
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। ध्रुव महाराज के द्वारा भगवान को स्तुति। ध्रुव महाराज को जानते हैं सब लोग? तो इस श्लोक को सब लोग तो नहीं गा पाएंगे, मैं गा लेता हूं। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शब्दार्थ सभी लोग बोलिए। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतः अंतकरण प्रविश्य प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द को इमां ये सभी प्रसुप्तां निश्चल या मृत संजीवयति पुनः जीवित होता है अखिल विश्वव्यापी शक्ति शक्ति धरह धारण करने वाला स्वधामना अपनी अंतरंगा शक्ति से अन्यांच अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ चरण पाव श्रवण कान त्वक चर्म आदि इत्यादि प्राण प्राण नमः नमस्कार है भगवते भगवान को पुरुषाय परम पुरुष को तुभ्यम तुमको। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान है, मेरे अंतकरण में प्रवेश होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को अर्थात हाथ पांव स्पर्शेंद्रिय प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी स्थिति उनमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्त अवस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आत्म दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुआ है, अतः तुम जागने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें तो मनुष्य रूप वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो, यह वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर अलौकिक होने से वे वैदिक आदेशों के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, यह निर्गुण नहीं है, समझ सके। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब तक ध्रुव महाराज ने अपने आप को अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतुकी कृपा से हो सका है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज के इंद्रिय तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण महामंत्र में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा अर्थात हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश का पालन के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवान्मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन करे न करे फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और वह केवल भगवान की ही सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ पांव कान जीभ मन जनांग आदि भगवान की सेवाओं में लग जाती है। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और न उसे सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती है किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्त लोग इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में पधारे। जब कभी भी भगवान के विषय में इसको थोड़ा आवाज ठीक कर दो, ठीक नहीं चल रहा है। हरे कृष्ण। जब भी भगवान के विषय में चर्चा की जाती है तो उसको सत्संग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्संग। हम यहाँ पर जुट के भगवत विषयक चर्चा जब करते हैं तो उसको सत्संग कहा जाता है ना। और सत्संग का क्या अर्थ होता है, सत्य का संग है ना, सत्य का संग है ना। इस दुनिया में सत्य कौन है, भगवान है ना, भगवान सत्य है। सत्य का क्या अर्थ होता है, सत्य का अर्थ होता है जो भूतकाल में थे, वर्तमान में है और भविष्य में, जिसकी सत्ता को कभी कोई टाल नहीं सकता उसको सत्य कहा जाता है ना। इसलिए ये भगवान की सत्ता है, और भगवान की सत्ता है इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, सत कहा जाता है। और सत के विषय में जब चर्चा की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है। क्योंकि इसी को केवल सत्संग कहा जाता है, बाकी कार्यों को क्या कहा जाएगा, झूठ संग कहा जाएगा है ना, उसको क्या कहा जाएगा, कुसंग कहा जाएगा। इसको सत्संग कहा जाएगा और उसको क्या कहा जाएगा, तो हम सत्य का संग कम करते हैं और दूसरा संग ज्यादा करते हैं। क्योंकि सत का मतलब होता है जो रियलिटी है ना, वास्तविकता है ना। ये जो हम श्रवण करते हैं ये वास्तविकता है ना, ये भगवत गीता भागवतम किसी की मनोकल्पना नहीं है, है ना। अब भागवतम को पढ़ेंगे उसमें जितने भी वर्णन हुए हैं उसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों का वर्णन हुआ है। तो वर्तमान का भी जो वर्णन है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बात तो बिल्कुल सही लिखा है इसमें, और भविष्य का भी अब आप वर्णन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही होने ही वाला ऐसा है ना। और भूतकाल बीत चुका है उसका भी वर्णन है ना, जिसका वर्णन इसमें हमको प्राप्त होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम आदि है ना, जिसमें चाणक्य है ना, बुद्ध और बड़े बड़े जो नीतिकार आदि आए थे उनका सबका वर्णन उसमें हुआ है ना, कि ये लोग आएंगे और इस प्रकार कार्य करेंगे। तो इन सारे लोगों का वर्णन ये प्रमाणित करता है कि हमारे वेद शास्त्र जो है किसी की कल्पना नहीं है ना, वेद शास्त्र है वो प्रमाणिक और वास्तविकता है, इसलिए इसको सत्संग कहा जाता है ना। क्योंकि सत भगवान है, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद है ना, सत चित और आनंद, तो सत का अर्थ होता है भगवान है ना, जो शाश्वत होते हैं उसको सत कहा जाता है। तो सत्य का जो संग है उसको सत्संग कहा जाता है ना। और इस सत्संग में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो उसका दुसंग होता है वो क्या हो जाता है, निसंग हो जाता है। निसंग मतलब उससे दूर हो जाता है। जब तक आप यहां बैठे हैं तब तक दूसरा संग क्या हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, दिखाओ क्या कैसे, उसका भी उपाय है। आप यहां बैठे रहो लेकिन आपका मन जो है वो, तो क्या हो गया, ये सत्संग नहीं होगा। तो सत्संगत्वे निसंगत्व, जब कोई व्यक्ति सत्संग में आता है, सत्य का संग करता है, तो दूसरे जो संग होते हैं उससे क्या हो जाता है, वो निसंगत्व है ना। और निसंगत्वे निर्मोहत्व, जब निसंग हो जाता है अर्थात संसारिक संग जब उसका छूट जाता है तो उसका जो मोह होता है, उसकी आसक्ति होती है, वो क्या हो जाती है, छूट जाती है ना। स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति रियलिटी को सुनता है, वास्तविकता को जब सुनता है, तभी उसका जो झूठ के प्रति उसका जो आकर्षण होता है वो क्या हो जाता है। वास्तविकता क्या है जानते हैं आप लोग, वास्तविकता यह है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। आप बोलेंगे नहीं, माता है, पिता है, सब कोई तो है, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम जो है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा के कोई माता कोई पिता इस संसार में नहीं है, है लेकिन इस संसार में नहीं है। वो कहां पे है, वैकुंठ में है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जीवात्मा का माता और पिता कौन है, पिता महस्य जगतो माता धाता पिता अहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि जीवात्मा का माता और पिता, रियल माता पिता मैं हूं, लेकिन उसने क्या किया, बच्चे लोग जानते हैं जब छोटे होते तब अपना एक घर बनाएंगे, किचन बनाएंगे, उसमें अपना चूल्हा रखेंगे, और उसमें एक हस्बैंड बनेगा और एक वाइफ बनेगी, और हस्बैंड जो है कमाने काम करने जाएगा और घर पे रहेगी, होता है कि नहीं, बच्चे बच्चे थे तब ऐसा खेलते थे। तो वैसे ही हम जो कर रहे हैं ना वो एक खिलौने का ही कार्य कर रहे हैं, भले ही हमको इसमें वास्तविकता प्रदर्शित होती है, लेकिन वो सारा क्या है, एक स्वप्न है, है ना। ये स्वप्न है, हम जो कार्य कर रहे हैं ये स्वप्न है। और रियलिटी क्या है, हम एक आत्मा है और एक दिन इस शरीर को छोड़ के, जहां हमारे माता भी साथ में नहीं आएगी, जहां हमारे पिता भी, हमारे पुत्र और हमारे पत्नी भी कोई साथ में नहीं। ये सत्य है, ये वास्तविकता है। और ये ज्ञान जब तक यहां रहेंगे तब तक हमको बना रहेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सत्संग। तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। जब ये ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है तब उसका जो मोह होता है, उसका जो आसक्ति होता है, वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, है ना। इसलिए निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। और जब व्यक्ति इस निर्मोह अवस्था में कंटिन्यू बना रहता है, जब उसका दिमाग हमेशा ये कार्य सोचते रहे कि इस दुनिया में भगवान के अलावा मेरा और कोई है ना, और मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान की सेवा करना ये मेरा धर्म है, लेकिन अभी उस सेवा को छोड़ के मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, जो हमारे रियल माता पिता को छोड़ के हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों की सेवा में जो हमारे कुछ नहीं लगते, समझ रहे हैं। तो हमारे वास्तविक माता पिता को छोड़ के हम दूसरों की सेवा में लगे हैं। हालांकि एक जीवात्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य कि उसकी माता पिता की सेवा करें, लेकिन पहले यह जानना होगा कि एक जीवात्मा के माता पिता कौन है, है ना। वास्तविक माता कौन है, वास्तविक पिता कौन है, है ना। तो हमारे वास्तविक माता और पिता कौन है, माता पिता मतलब क्या जानते हैं, जो हर अवस्था में हमारा साथ दे, है कि नहीं। चाहे बेटा चोरी भी करता है ना, फिर भी क्या बेटे को लात मार के घर से भगा देता है, क्योंकि माता पिता क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, है कि नहीं। वो कितनी भी बड़ी गलती करे किंतु माता पिता कभी उसको छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान जो है हमको कभी नहीं छोड़ते, हम कितना भी गर्हित कार्य करते हैं, भगवान हमारे हृदय में हमेशा बैठे रहते हैं और हमारा साथ वो कभी। और घर में रह के कुछ घोटाला किया तो पत्नी हो सकता है कि चलो, होता है कि नहीं, पत्नी छोड़ सकती है, पुत्र आगे जाके छोड़ ही देता है ना। पुत्र भी माता पिता को क्या करेगा, पुत्र छोड़ते हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, है ना, इस दुनिया में, क्योंकि वो हमारे वास्तविक माता पिता और वास्तविक पुत्र है ही नहीं, हमने मान लिया है। जैसे बच्चे लोग मान लेते हैं खेल खेल में कि ये मेरे, है ना, वैसे हमारे कोई है नहीं, लेकिन मान लेते हैं ना कि ये है। तो अशाश्वत संबंध को भी हमने क्या मान लिया, शाश्वत, और उसी को हम अपना मान। लेकिन हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ, और उनके साथ के संबंध को हमने क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन जब हम इस प्रकार के विचारधारा वाले लोगों के साथ रहते हैं तो ये हमारी विचारधारा क्या होती है, मजबूत होती है। और वो जीवात्मा अंत में ये निश्चय कर सकता है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं। कभी कभी अनुभव हो ही जाता है, घर में बैठे बैठे ही हो जाता है, जब घरवाली कभी कभी सुना देती है तो हो जाता है कि नहीं, सही में इस दुनिया में है ना। तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व मीन्स एक जगह पे ये सही है, भगवान ही सही है और उसके साथ उसकी सेवा करना ये मेरा धर्म है और ये ही सही है, बाकी सब क्या है, झूठा। और आप सही समझ सकते हैं, देखिए प्रभुपाद महाराज ने इस दुनिया को एक स्वप्न के साथ तुलना दिया है। ये दुनिया क्या है, एक सपना है, है ना। हम जो जी रहे हो, जो कार्य कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्वप्न है ये। जैसे आप जानते हैं जब व्यक्ति सोता है तब सपना आता है कि नहीं। व्यक्ति जब सोया रहेगा तो ये बहुत अच्छा स्वप्न देखेगा, क्या देखेगा, वो बहुत बड़ा राजा बना हुआ है, बहुत सारे नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे हुए, बहुत कुछ, मतलब एकदम खुश रहता है। स्वप्न में जब रहता है तभी एकदम खुश, इतना सारा ऐश्वर्य, इतना धन हमारे पास है, अब किसी चीज की हमें, लेकिन जैसे ही आंख खुलता है तो सुबह होती है और जब भी कोई उठाता है और आंख खुलती है तो पूरा उसका सत्यानाश हो। लेकिन सपने में तो मान ही लिया था कि मैं सब कुछ है ना, ये सब कुछ मेरे पास है और सब कुछ मेरा ही है। स्वप्न में जाता तो मान लिया था कि सब कुछ, लेकिन जैसे ही आंख खुलता है तो सब गायब है कि नहीं। आंख खुलते ही सब गायब हो जाता है। लेकिन ये सपना ऐसा है कि जब आंख खुलता है ना तभी सब कुछ गायब होता है। लेकिन ये जो हमारा ये जीवन सपना है ना, ये सपना ऐसा है कि जब आंख बंद होगी ना तभी ये स्वप्न टूटेगा और तभी हमको पता चलेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं, जो मैं कर रहा था वो क्या था, सब व्यर्थ था, है ना। क्योंकि ये जीवात्मा जब ये शरीर को छोड़ के चला जाएगा तब शरीर के जितने भी संबंध होते वो क्या हो जाएंगे, उसके समान। तो जीवात्मा अकेला फिर जाएगा, है ना। तो जीवात्मा को जब अकेला जान, जब उसको स्वप्न, वो स्वप्न ऐसा है कि जब आंख खुलता है तब टूटता है, लेकिन ये जीवन का स्वप्न ऐसा है कि जब आंख बंद होती है तब टूट रहा है और तब उसको पता चलता है कि इस दुनिया में रियल में मेरा, जिसके लिए मैं दिन रात लगा रहता था, वो कोई कोई हमारा नहीं है, है ना। तो निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जब विचार ये दृढ़ हो जाता है कि इस दुनिया में भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है और उनकी सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है, तो ये जो विचार है हमारा जब दृढ़ हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, मुक्त अवस्था कहा जाता है, है ना। इसी को क्या कहा जाएगा, मुक्त अवस्था, है ना। तो सत्संगत्व ये प्राप्त कहां से होता है, उसका प्रथम स्टेप कहां पे है, साधु संघ, है ना। सत्संग में ये प्राप्त हो सकता है और भगवान के भक्त ही सत्य का संग करा सकते हैं। इस दुनिया में हमको सत्य का संग कौन कराता है, भगवान के भक्त, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज, है ना, उन्होंने क्या किया, हमको सत्य का संग कराया, बाकी हम तो जानते ही नहीं थे, है ना। सत्य का संग किस प्रकार होता है, ज्ञान के माध्यम से कराते हैं, है ना। तो भगवान के भक्त साधु जन जो होते हैं वो हमको क्या करवाते हैं, सत्य के साथ संग करवाते हैं, है ना। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, साधु के दर्शन जो होते हैं, भक्त के दर्शन, वो बहुत पुण्य करने वाले होते हैं, है ना। और तीर्थ भूता ही साधव, और साधु जो होते हैं वो स्वयं तीर्थ के समान होते हैं, है ना, तीर्थ के समान होते हैं। क्योंकि भागवतम में कहा गया है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले होते हैं, मतलब तीर्थ को भी पवित्र करने वाले भगवान के भक्त होते हैं, है ना। कालेन फलते तीर्थ, जब तीर्थ में कोई व्यक्ति जाके स्नान आदि करता है तो उसका इफेक्ट बहुत लंबे समय पे होता है, समझ रहे हैं। कालेन फलते तीर्थ, बहुत लंबा समय बीतने के बाद उस तीर्थ का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन सद्य साधु समागमा, है ना, लेकिन भगवान के भक्त के संग में कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत उसके अंदर चेंज आ जाता है, है ना। देखिए कई लोग होते हैं, हर साल जाएंगे हरिद्वार गर्मी के सीजन में, 15-20 दिन उधर रहेंगे और गंगा स्नान करेंगे, करते कि नहीं, बहुत लोग जाते हैं, है ना, हर गर्मी में जाएंगे गंगा स्नान करेंगे, लेकिन जीवन में कभी परिवर्तन देखा आपने, अपने जीवन में से बुरी आदतों को तक नहीं छोड़ सकता है, तो व्यक्ति कई बार गंगा स्नान करने से भी उसको क्या लाभ हुआ, है ना। और एक व्यक्ति वो है जो भले ही वो गंगा स्नान करने नहीं गया है किंतु केवल आके भगवान के भक्तों के संग में आके क्या करेगा, बैठेगा और बैठ के अपने आप को जानेगा, मैं कौन हूं, है ना, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके विषय में जब सुनता है, भगवान के विषय में जब सुनता है तब उसको वास्तविकता का अनुभव होता है, वो अपने आप को जान सकता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को जानने में समर्थ होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, ये साधु संघ का तुरंत इफेक्ट होता है, है ना। जैसे प्रभुपाद महाराज के साथ में कई ऐसे लोग थे, है? जो बिल्कुल घूमते घूमते आ गए और प्रभुपाद महाराज ने उसको भगवान के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। हालांकि वो लोग पहले सत्कर्म नहीं करते थे, ऐसा नहीं, वो गंगा स्नान यमुना स्नान इस भूमंडल में जितने भी तीर्थ सब में स्नान किए हुए लोग, है, फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, है ना, अपनी बुरी आदतों को वो छोड़ नहीं पाते थे, किंतु जैसे ही भगवान के भक्त के संग में कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत ही वो क्या करेगा, इधर आएगा तो सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे, प्रभु जी चाय पीना छोड़ दो, है कि नहीं, चाय पीना छोड़ दो, उसके बाद बोलेंगे तमाकू आदि खाते हो क्या, वो भी छोड़ दो, नॉनवेज वो भी छोड़ दो, दाल वो भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो धीरे धीरे करके भगवान के भक्त के में संग में आके तुरंत जो बुरी आदत है वो तुरंत क्या हो जाती है, छूटने लगती है। गंगा में स्नान करने जाएगा तो छोड़ के आएगा क्या, हर बार प्रतिज्ञा लेता है, जानते हैं आप, गंगा में स्नान करेगा उधर जाके कहेगा आज से खाई नहीं, लेकिन आके फिर से चालू होता है कि नहीं। ले देखिए तो काले ना फलते तीर्थ, बहुत लंबे समय ये कई बार प्रतिज्ञा लेता है, कभी कभार ये सक्सेस होता है तो होता है, बाकी होता है, लेकिन सत्य साधु समान हुआ, भगवान के भक्त के संग में अगर कोई व्यक्ति आता है तो ये तुरंत उसके ऊपर क्या करता है, प्रभाव डालता है। आप जानते हैं हनुमान जी महाराज जब लंका उनको जाना था, तभी लंका जाते टाइम सबसे पहले उसको कौन मिला, उसके गेट पे लंकिनी मिली। लंकिनी जो थी उसको भी साधु का संग हुआ, क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है, सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, है ना, रामदास है ना, हनुमान जी महाराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो हनुमान जी महाराज एक छोटा सा रूप बना के उसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन लंकिनी है ना वो बहुत उस्ताद थी, है ना। तभी उसने कहा कि इसके अंदर चोर लोगों को प्रवेश करना, आप क्या चोर है, चोर का रूप धारण करके अंदर जाना चाहते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले उसको तर्क दिया, बोले कि अगर चोर को अंदर प्रवेश करना मना है तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर गया हुआ है राम की पत्नी को लेके, अगर तुम्हारा यही नियम है कि चोर को इस गेट से मैं अंदर नहीं जाने देती हूं, तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर ही बैठा हुआ है। तो कई बार संवाद करने के बाद जब नहीं सुधरी तो सब क्या किया उसने, एक जोर से बजाया उसको। तो देखिए ऐसा मत सोचिए कि हनुमान जी महाराज को मार खाने के बाद वो मतलब झगड़ा हो जाएगा, भगवान के भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, शाम दाम दंड भेद ये सारी नीतियों को जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। कई बार कुछ लोग होते हैं लातों के नहीं मानते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये लातों भूत वाली है, ये समझने वाली, हनुमान जी महाराज एक जोर से उसको बजाया, और जैसे ही उसको पड़ी तभी उस लंकिनी को याद आ गया कि ब्रह्मा जी ने मेरे को आके बोला था कि जिस दिन तुमको एक व्यक्ति आके जोर से बजाएगा, क्योंकि लंकिनी को कोई मार ही नहीं सकता था, और उसको पता था कि अगर मुझे कोई एक भी बजा दिया तब लंका का नाश निश्चित है, और जैसे ही पड़ी तो लंकिनी का दिमाग खुल गया, जितने भी वो इधर के जितनी नस बंद थी वो सब खुल गई, उसको पता चला कि नहीं अभी मुझे वास्तविक, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते भले ही बजाते लेकिन फिर भी ज्ञान देते हैं उसको, और इसको उसको ज्ञान देने का तरीका अलग था, है ना, इसको समझाने का स्टाइल थोड़ा अलग था, और जैसे ही उसका ज्ञान हुआ तुरंत ही तात मोर अति पुण्य बहु था, देखो उसको एक पढ़ने के बाद उसका लैंग्वेज चेंज हो गया, क्या बोलते हैं कि हे तात मेरे बहुत पुण्य है, क्या पुण्य है, देखे वो नयन राम कर दूता, मैंने राम के दूत को आज नयन भर के देखा, मतलब देखा मतलब अनुभव भी किया कैसा बजा भी सकता है वो। तो एक पढ़ने मतलब वो बोलती है कि देखे वो नयन राम कर दूता, नयन भर के आज देख लिया कि समर्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें शक्ति नहीं होती है, सहन करते मतलब ये नहीं कि उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति होती है लेकिन फिर भी सहन करते, जब नहीं होता है बहुत हद हो जाती है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता है ना, मेरे बहुत भाग्य है कि आज मुझे आप जैसे भक्त के, क्योंकि ऐसे भी भक्त लोग होते हैं कभी किसी को मारते नहीं है, लेकिन आपसे पाला पड़ा इसलिए आपने ठीक कर दिया मेरा हालत। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, स्वर्ग और अपवर्ग के जितने भी सुख इस दुनिया के सारे सुख को अगर एक तराजू होता है ना, तराजू है? पहले ऐसे नापते थे, अभी तो सब सिस्टमेटिक तराजू जो दो पलरे वाला होता है, तो कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, स्वर्ग और अपवर्ग इस दुनिया के जितने भी सुख है एक तुला में रख दिए जाए, और दूसरा तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, और दूसरी ओर भगवान के चर्चाओं को अर्थात सत्संग को एक और रखा जाए, वो भी एक घंटे का सत्संग नहीं, बहुत क्षण लव जिसको कहा जाता है, लव जो है वो एक टाइम का समय का एक, जैसे हम लोग सेकंड है ना, वैसे लव जो है एकदम सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा माना जाता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति उतने क्षण के सत्संग को भी उसमें रखता है, मतलब इसको तो इतना ही सत्संग मिला ना, कितना मिला, एक पढ़ने तक का बस, उससे ज्यादा तो उसको मिला ही नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर इतना सत्संग अगर एक पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में इस दुनिया के सारे सुख को रखा जाए, तो वो सारे सुख का तर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और ये भारी हो जाएगा, है ना। क्योंकि सत्संग की खूब महिमा है ना, क्योंकि इस दुनिया में जीवात्मा को वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग है। जब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं जाता या फिर सत्संग को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो अपने आप का उद्धार, उसमें विवेक या फिर विचार बुद्धि उसके अंदर जागृत नहीं हो सकती है ना। बिनु सत्संग विवेक न हुई, फिर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। सत्संग जो है उसके बिना व्यक्ति को विवेक नहीं होता है। विवेक जानते हैं किसको कहते हैं? विवेक किसको कहा जाएगा? सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है। विवेक का क्या अर्थ होता है मालूम है? जैसे हमारे में विवेक हमको सिखाया जाता है बचपन में, विवेक करना सीखो। विवेक करना मीन्स कोई व्यक्ति आता है तो उसको बोलना चाहिए आइए, उसके सामने मुंह देख के फाड़ के देखते नहीं रहना चाहिए। कोई व्यक्ति गेट पे घर पे आया तो उसको क्या बोलना चाहिए? कम से कम आइए। आने के बाद उसको आसन देना चाहिए, जल देना चाहिए। इसको विवेक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? और जबरदस्ती उसका बेटा जो होता है, कभी कभी क्या होता है, माता पिता सम्मत नहीं होते तो बेटे को क्या बोलेंगे? उसको बोल बैठा ऐसा। तो ये जबरदस्ती करवाना पड़ता है बेटे से, क्योंकि उस बेटे के अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है, है ना। तो सत्संग के बिना व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति नहीं होती। विवेक का अर्थ होता है वास्तविक क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान। विवेक को क्या कहा जाएगा? क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान। और इसकी का ज्ञान जो है उसको ही विवेक कहा जाता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब तक व्यक्ति को नहीं होती है, तब तक ये विचार उसके अंदर आ भी नहीं सकता है ना। तो भगवत कृपा से व्यक्ति को ये जो विचार है क्या सही है क्या गलत है, इसका विचार भगवान की कृपा से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है ना। तो हम जो श्रवण कर रहे हैं ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के विषय में आप लोग संक्षिप्त में ऐसे कई बार सुने भी होंगे। ध्रुव महाराज है वो किसके पुत्र थे? उत्तानपाद, है ना। उत्तानपाद राजा थे और उत्तानपाद के पिता कौन थे? मनु महाराज, है ना। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए और उनके पिता जो है उनको दो पत्नियां थी, एक थी क्या था, सुनीति और सुरुचि। दो पत्नी थी उनकी, सुरुचि और सुनीति, है ना। तो सुनीति जो है वो उनकी बड़ी पत्नी थी और सुरुचि जो है वो उसकी छोटी। तो बड़ी पत्नी से ऐसे ही प्रेम कम होता है, और छोटी पत्नी से ज्यादा होता है ना राजा। तो हुआ यूं था कि बड़ी पत्नी से जब विवाह हुआ था तब उनसे कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह किया और उससे संतान प्राप्ति की इच्छा से दूसरा विवाह किया। तो स्वाभाविक है कि दूसरी जो आएगी उसको संभाल के और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तब जब दूसरी को लाना था तब सुरुचि ने क्या कहा? सुरुचि ने कहा जब तक वो सुनीति जब तक घर में है तब तक मैं आपके साथ ब्याह नहीं करूंगी। बोला ठीक है। तब वो सुनीति जो है वो बहुत ही बुद्धिमान थी, उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको पुत्र प्राप्त करना है और उसकी ऐसी मांग है कि हम आपके साथ में नहीं रह सकते, तो आप एक काम कीजिए, मैं मुझे एक दूसरा घर बना दीजिए, मैं वहां पे रहूंगी आपसे अलग, है ना। तभी सुरुचि उसके साथ ब्याह हुआ और आगे जाके दोनों को पुत्र हुआ, आगे जाके दोनों को बेटा हुआ, एक को नहीं दोनों को हो गया। और उसमें जो सुनीति थी जो बाहर रहती थी उसका पुत्र, उसके पुत्र का नाम हुआ ध्रुव, और जो उसकी छोटी पत्नी थी उसके पुत्र का क्या नाम हुआ? उत्तम, है ना, ध्रुव और उत्तम। तो दो पुत्र थे। अब स्वाभाविक है कि दोनों पुत्र भाई भाई, है? एक ही बाप के दो बेटे। राजा अपने सिंहासन पे बैठा था और उत्तम को गोद में लिए बैठा था। उत्तम जो है उसका छोटा बेटा था। ध्रुव ऐसे बड़े भी थे, है ना, बड़ी पत्नी के थे और बड़े भी थे उम्र में। तभी उत्तम जो है वो गोद में बैठे हुए थे, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसके बाजू में उतनी घरवाली भी बैठी थी और उसके बेटे को गोद में लेके बैठे थे। तो ध्रुव महाराज खेलते खेलते क्या सोचे कि एक भाई बैठा है तो मैं भी जाके बाजू में पिताजी के गोद में बैठता हूँ। तो जैसे उसने जिज्ञासा किया और वहां गया, तो जैसे उसके गोद में बैठने गया तो तुरंत उसकी बाजू में जो धक्का मार दिया, सुरुचि ने क्या किया, धक्का मार के नीचे गिरा दिया। और बहुत अनाप शनाप बोले उसको ध्रुव महाराज, जैसे उसकी उम्र 5 साल थी, कितनी 5 साल की उम्र थी उसकी, कोई बड़ी मतलब बहुत बड़े हो गए थे ऐसा भी नहीं, बच्चे थे और 5 साल की उम्र। और जैसे ही उसको धक्का मारा, ध्रुव महाराज ने पूछा क्यों मेरे को धक्का मारा, बोले कि तुम इधर नहीं बैठ सकते हो। बोले क्यों नहीं बैठ सकता, बोले कि इस गोद में बैठने के लिए तुमको मेरे पेट से आपको जन्म लेना होगा। बोले क्यों, क्योंकि तुम्हारी माँ जो अभी बाहर रहती है ना, अभी तुम्हारी माँ जो है वो, हालांकि भले तुम्हारे पिता है ये, लेकिन फिर भी अगर तुमको इस आसन पे बैठना है तो तुमको क्या करना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेके आप बैठ सकते हो। तभी स्वाभाविक है क्षत्रिय थे ना, ध्रुव महाराज कौन से कुल में जन्म लिए थे, क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल का ऐसे भी खून थोड़ा क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं, देखे अनुभव किए क्या ब्राह्मण का खून जो होता है ना बहुत ठंडा होता है, उसको कितना भी गाली दो कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षत्रिय को आप कुछ भी थोड़ा भी बोल दो उसका दिमाग सटक जाता है तुरंत, क्षत्रिय खून होने के नाते, है ना। तो खून का अपना एक प्रभाव होता है। ध्रुव महाराज को जैसे धक्का मारा तो संवाद के बाद उसको बहुत ही उसको क्रोध आया। और सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि जैसे सांप को अगर कोई व्यक्ति डंडा छुआ दे तब सांप क्या करेगा, सहन नहीं कर सकता है, वो फुंकारने लगता है तुरंत, है ना, मतलब उसकी जान खा जाएगा अभी तो वैसे ही हालत, ध्रुव महाराज भले ही छोटे थे लेकिन उसकी दशा बहुत क्रोध में आ गए ध्रुव महाराज, और वहां से क्रोध में आके वहां से निकल गए, कुछ नहीं बोले और रोते रोते चले गए अपनी माता के पास। जैसे ही जा रहे थे उससे पहले ही उसकी माता को किसी सैनिक ने जाके खबर दे दिया कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बेटा रोते रोते आने ही वाला था, स्वाभाविक है कि माता भी दुखी रहेगी, इस प्रकार का व्यवहार जब अपने बेटे से होगा तो बाप भी अभी क्या करेगा, बाप भी कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि वो उसके वश में था, किसके, सुरुचि के वश में था, है कि नहीं। जब उसके वश में था तब इस प्रकार की घटना बनने के बाद जब ही सुनीति के पास ध्रुव महाराज अपनी माता के पास गए, तो माता के पास जाने के बाद उसकी माता ने बहुत अच्छे उपदेश दिए। उसने ये नहीं सिखाया कि आगे जाके हम लोग भी देख लेंगे बेटा, अभी तू थोड़ा सहन कर ऐसा नहीं सिखा। आज की माता क्या सिखाती थी, उसको भी सिखा देंगे थोड़ा सब्र करना, अभी अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, 7:30 की पनौती चल रही है, थोड़ा टाइम ठीक हो जाएगा तो उसको भी दिखाएंगे हम लोग उसकी माँ ने यह नहीं सिखाया उसको, उसकी माँ ने क्या सिखाया, देखो बेटा हमारे कर्म के अनुसार हमको जीवन में सुख दुख प्राप्त होते हैं, इसमें हमको बुरा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज जो है वो क्षत्रिय खून वाले थे ना, स्वभाव क्षत्रिय का था, बोले कि नहीं बदला तो देखे रहूंगा, है ना। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल क्रोध में थे लेकिन माता उसको अच्छे अच्छे, देखिए बेटे का स्वभाव चाहे कैसा भी हो लेकिन माता अगर बचपन में उसको अच्छी शिक्षाएं देना तो बेटा आगे जाके अपना बहुत सुंदर भविष्य बना सकता है, है ना। बेटे की विचारधाराओं के पीछे उसके माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है, उसके माता पिता ने जो विचारधारा बचपन से दी है ना उसी के अनुसार वो बेटा अपना जीवन आगे जाके चलाता है, है ना। तो बचपन में अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश देना चाहिए भगवद गीता और भागवतम से प्राय, है ना। तो सुनीति ने क्या किया, उनको बहुत अच्छे से बोला कि ठीक है तुमको अगर इतना क्रोध है तो एक काम करिए, बेटे को समझा रहे बेटा देखो उसने कहा है कि अगर तुमको उस गादी के ऊपर बैठना है तो तुमको उसके गर्भ से क्या करना होगा, लेकिन एक काम करो तुमको अगर तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा। अगर तुम भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान ये उत्तानपाद का क्या राज्य, उससे भी बड़ा बड़ा राज्य तुमको दे सकते हैं। जब इस प्रकार कहा ध्रुव महाराज के मन में ये बात धस गई, उसने सोचा कि नहीं अभी अभी बाप से बड़ा बन के दिखाऊंगा ध्रुव महाराज ने एक्सेप्ट किया और बोला कि अभी बाप से बड़ा प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा। और उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, पहले तो उन्होंने, तभी उसकी माता ने कहा कि देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राय ऋषि मुनि लोग वन में जाया करते हैं, क्योंकि सतयुग था, तभी कोई ऐसा मंदिर व्यवस्था नहीं था, है ना। तो उसने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए प्राय ऋषि मुनि लोग कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि अगर भगवान जंगल में ही मिलते हैं तो मैं जंगल में जाके उसको खोज निकालूंगा। और जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया, रात को जब उसकी माता सोई थी तो माता को छोड़ के ध्रुव घर से, देखिए बहुत अभी बच्चा है बचपन में अभी क्या बुरा लगाना चाहिए, तो सही में ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो वन में निकल गए तो ऐसे प्राय मतलब 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय था, निकल गए और धीरे धीरे उजाला होते जा रहा था। और सुबह सुबह उसको कौन मिले, नारद मुनि। नारद मुनि ने बोला कि बेटा जान गए ना, क्योंकि मेरे शिष्य का ही तो बेटा है, उत्तानपाद जो है वो नारद मुनि के शिष्य है, तो नारद मुनि के शिष्य होने के नाते बेटे को जानते थे। बेटा ध्रुव किधर जा रहे हो, बोले कुछ नहीं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। बोले भगवान को ढूंढने जा रहा है, ये तुम्हारा उम्र थोड़ी है, 5 साल की उम्र में कोई भक्ति किया जाता है क्या है ना, आज के भी माता पिता सिखाते हैं ना बेटे को, ये उम्र है क्या भक्ति करने का, भक्ति कभी करना चाहिए, हाँ जब बाल झड़ जाए और बोलने पे मुंह में से लार गिर जाए तभी भक्ति करना चाहिए, है ना अभी से भक्ति करके क्या करोगे तुम, जब हम भगवान को दंडवत भी नहीं कर सकते ना तभी मंदिर में भगवान की भक्ति करने के लिए, अभी भक्ति का उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई का उम्र है। नारद मुनि भी सिखा रहे, देखो नारद मुनि भी यही उपदेश दी, बोले कि ये तुम्हारा उम्र है क्या भक्ति करने की, अभी क्या भगवान, अभी जाओ घर पे पढ़ाई लिखाई करो। नारद मुनि को देखा सामने, एक ध्यान से देखने के बाद नारद मुनि को देखिए, देखो महाराज अगर तुमको दिखाना है भगवान कहां मिलेंगे तो दिखाओ, नहीं तो यहां से हटो, क्योंकि उसका क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा था। उसकी वो जो सौत ने जो शब्द कहे थे, उसकी दूसरी माँ ने जो शब्द कहे थे, उसको हृदय में घर कर गए थे। उसी बात को याद करके नारद मुनि को बोल दिया, तुम साइड में हटो, तुमको बता सकते हो तो बताओ भगवान कहां मिलते हैं, नहीं तो आप भी साइड में हो जाओ। अभी नारद मुनि ने देखा कि ये ठीक लगता है, हाँ ये भगवान को प्राप्त करने की यही लालसा, यही स्थिति होना चाहिए, है ना। नारद मुनि ने देखा कि यही ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं भगवान मतलब कैसे प्राप्त। तभी नारद मुनि ने उनसे कहा, आप जानते हो भगवान कहां और कैसे मिलेंगे, बोले कि नहीं आप बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उसने नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि देखो भगवान को प्राप्त करना है तो आप जाओ वृंदावन में, मधुवन है, कहां पर, मथुरा में वृंदावन और वृंदावन में मधुवन है, और उस मधुवन का जो यमुना का तट है उस यमुना के तट के ऊपर जाके आप साधना करना, और किस प्रकार की साधना वो भी मैं तुमको सिखाता हूं। देखिए साधना या फिर भक्ति करने के लिए भी स्थान की बहुत महिमा होती है ना, स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम भगवान का नाम यहाँ पे लेते हैं और अच्छे जगह पर जाके भगवान का नाम लेते हैं तो उसका फलों में बहुत अंतर हो जाता है ना। अगर अन्य पुराण अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे एक नाम जप करता है तो उसको उतना ही फल मिलता है, लेकिन यही भगवान नाम यदि कोई भगवान के धाम में जाके वृंदावन में जाके लेता है तो वही भगवान का नाम उसको 1000 गुना फल प्रदान करता है, 1000 गुना, है ना। तो स्थान का कुछ प्रभाव होता है ना, स्थान का प्रभाव से उसका फल बढ़ जाता है कि नहीं। तो ध्रुव महाराज को समझाए कि आप जाओ वृंदावन और वहां जाके आप साधना और तपस्या करना, और उनको कहा कि देखो भगवान कैसे होते हैं, भगवान का कैसा स्वरूप होता है। तो भगवान के पूर्ण स्वरूप का उसने निरूपण किया, नारद मुनि ने कहा कि भगवान का ऐसा ऐसा स्वरूप होता है, और सारे स्वरूप को वर्णन करने के बाद कहा कि अगर इस भगवान को प्राप्त करना है तो आप इस मंत्र का जप करना, और उसको मंत्र दीक्षा दी है, उनसे कहा कि इस मंत्र का जप करना, अगर कोई व्यक्ति 7 दिन, है ना, 7 दिन और रात कंटिन्यूअस इस मंत्र का जप करता है तो देवता में स्वर्ग में जितने भी देवता घूमते हैं ना वो आप अपनी आंखों से उसको देख पाओगे। तो 7 दिन ये मंत्र जप करने का ये फल है कि आकाश में घूमते हुए देखता, हालांकि हमको अभी दिखते नहीं है ना, देवताओं के दर्शन हमको नहीं होते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को 7 दिन रात कंटिन्यूस जपेगा तो उसको उस दर्शन को प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि ने ऐसा कहा। फिर नारद मुनि ने कहा कि अगर तुम इस मंत्र को और दृढ़ता और श्रद्धा से जपते रहोगे तो भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, और फिर भगवान से आपको जो चाहिए वो मांग लेना। तब नारद मुनि ने कहा कि ओम नमो भगवते, ये मंत्र उसको दिया, और इस मंत्र देने के बाद उसको कहा कि ये मंत्र आप जप करना, है ना। और इस मंत्र देने के बाद नारद मुनि तो वहां से चले गए उसके पिताजी के पास, और पिताजी के पास जाके पूछा, हालचाल पूछे उसके। हालांकि नारद मुनि को सब पता था कि बेटा इसका जंगल में चला गया है, और उसके बाप को भी वहां पे पता चल गया था कि बेटा घर से भाग गया है, और बेटा बेटे को ढूंढने के लिए सारे सैनिकों को सबको लगा दिया था। तो वहां पे वो राजा परेशान था, और नारद मुनि वहीं पे चले गए और वहां पे जाके पूछा कि कैसा है आपका हालचाल, तो ठीक है। तो क्या करेगा अभी राजा, अब सारी घर के परेशानी उसको थोड़ी बताएगा कि ये प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो उसने कहा ठीक चल रहा है, लेकिन नारद मुनि तो जान रहे थे, उसने बोला कि तुम्हारे मुख पे कुछ वैसा उदासीनता हमको महसूस हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं सॉल्यूशन। तभी आगे जाके उसने बताया कि देखो तुम्हारा बेटा भगवान को प्राप्त करने गया है, आप चिंता मत करो, मैंने उसको दीक्षा, मैंने उसको दिखा दिया है भगवान कहाँ और कैसे मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार उसको सांत्वना दिए कि आप चिंता मत करो, जब भगवान मिलेंगे तभी वो आएगा, उससे पहले आपका बेटा अभी आने वाला नहीं है। तो ध्रुव महाराज वहां से आगे बढ़े, वन में गए, और उसी वृंदावन में, है ना, वृंदावन में जाके मधुवन में जाके अपना उस यमुना में स्नान किए, और यमुना में स्नान करके अपना आसन लगा के उस मंत्र का जप प्रारंभ किया, और उसमें वर्णन है किस प्रकार उन्होंने तपस्या पूर्वक भगवान के नाम को जपना प्रारंभ किए थे। 6 महीने में भगवान को उसने क्या कर लिया, प्राप्त किया, है ना। केवल इस मंत्र को उन्होंने 6 महीना जपा, लेकिन बहुत तपस्या पूर्वक जपे थे। हम लोग तो खा पी के मस्त होके जपते हैं ना, लेकिन ध्रुव महाराज तपस्या पूर्वक, है ना, बहुत तपस्या किए थे, और उस प्रकार उन्होंने इस मंत्र को जपे थे, इसलिए भगवान उसके ऊपर तुरंत, क्योंकि उसको तीव्रता से चाहिए था, ऐसा नहीं हमको तो भगवान चाहिए लेकिन कैसे, ठीक है आराम से चाहिए, इतना घाई नहीं है हमको, हाँ आराम से चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्रुव महाराज को ऐसा नहीं था, ध्रुव महाराज को तो यही ठान के गए थे कि आज मिले तो आज ही प्रकट कर लो, है ना, उन्होंने ये निश्चय किया था, भगवान मिले तो आज ही प्रकट कर लूंगा उनको, तो ये निश्चय से गए थे कि भगवान को प्राप्त किसी भी हालत में करना है, है ना। और इस दृढ़ता से वो गए थे, इसलिए उसका नाम ध्रुव हुआ। ध्रुव का अर्थ होता है जो निश्चय कर ले कभी फिर इसका टले, उसको ध्रुव। उन्होंने ठान लिया था कि ये करना है तो करना, ऐसा नहीं कि अभी चलो अभी पक गया चलो वापस, है ना। पहले जाते थे सत्संग में 8 माला करते थे, बहुत अच्छा लगता, फिर पता चला कोई भाव नहीं दे रहा था तो धीरे धीरे सत्संग में जाना भी छोड़ दिया और जप करना भी छोड़ दिया। बोले ये ध्रुवता नहीं है, ध्रुवता मीन्स जो करना है तो करना है ना, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, है ना। तो ध्रुव महाराज की निष्ठा के कारण भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए 6 महीने के बाद। हुआ था यूं, सारे देवता व्याकुल हो गए, क्योंकि ध्रुव महाराज की तपस्या से वायुमंडल का जो बहना था वो पूरा क्या हो गया, स्तब्ध हो गया। देवता लोग को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तब देवताओं ने जाके भगवान से कहा कि जाओ ना जल्दी, नहीं तो हम लोग सब लोग मर जाएंगे। तभी ध्रुव महाराज की तपस्या को देखकर भगवान उनके पास गए, और भगवान ने उनके पास जाके फिर दर्शन दिए, और वर्णन इस प्रकार है, ध्रुव महाराज के सामने जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज तो अपने मन में ही भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आंख खोल के बाहर देखने का उसको कोई ज्ञात नहीं था कि बाहर भगवान आ गए। तो भगवान ने देखा कि मैं इसके सामने आया हूं लेकिन आंख तो खोल नहीं रही है। तब भगवान ने क्या किया, उसके हृदय में जो उनका ही स्वरूप था उसको क्या कर दिए, हटा दिए। और जैसे ही उन्होंने वहां से अपना स्वरूप हटाया तो ध्रुव महाराज व्याकुल हो गए, ऐसे जैसे व्यक्ति को 10-15 दिन खाना न दिया जाए और भूख के मारे कैसा तड़पेगा, और जैसे ही कहीं चपाती भी दिख गया तो व्यक्ति उसके लिए व्याकुल हो जाता है ना। उसी प्रकार जैसे ही भगवान उनके हृदय से अदृश्य हुए कि ध्रुव महाराज छटपट आने लगे, और जैसे ही आंख खोला तो वही जो स्वरूप वो अंदर देख रहे थे वो बाहर। और जैसे ही उनको देखे सबसे पहले उनको क्या किया, दंडवत मारे, और दंडवत मार के भगवान के सामने खड़े रहे, और भगवान ने सबसे पहले उनको क्या किया, अपने हाथ में, भगवान के हाथ में चार वस्तु होती है, क्या है वो चार, शंख चक्र गदा और पद्म। तो भगवान ने अपने कोमल हाथ में जो शंख पकड़े थे वो शंख उनके गाल पे छुआ दिया। सबसे पहले भगवान, स्वाभाविक है ना, बच्चे जो होते हैं उसको छूने के लिए स्वाभाविक, तो भगवान ने भी देखा कि मेरा भक्त है, और भगवान जो है वो पिता है ना, भगवान अपने भक्त के प्रति बहुत वत्सल होते हैं, भगवान से भी नहीं रहा, भगवान ने क्या किया, उसको छूने के लिए अपना शंख जो है उसके गाल पे। आप मानते हैं कि ध्रुव महाराज के गाल मस्त एकदम खा पी के लाल थे, 6 महीना इतना तपस्या किया था कि है ना उनका शरीर जो है बिल्कुल गल गया था, है ना, और उस बेटे की हालत को देख के भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने जैसे ही शंख स्पर्श किया उनकी जो गई हुई सुंदरता थी वो फिर से उसको प्राप्त हो गई, और उनका जो गया हुआ ज्ञान आदि जो था उनकी सारी इंद्रियां जो है वो दिव्य हो गई। तो ध्रुव महाराज जैसे उनको गाल पे शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज ऐसा अनुभव किए कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन सारी शक्तियां किसने, भगवान ने मुझे प्रदान की। हालांकि 5 साल की उम्र में कोई व्यक्ति स्तुति कर नहीं सकता है ना, किसी के गुण, भगवान के गुणों को वो भी इतने अच्छे श्लोकों में गा देना, ये किसी आज के विद्वानों के बस की भी बात नहीं है। और ध्रुव महाराज ने जो 12 श्लोक में भगवान की स्तुति किए हैं, और उस स्तुति को श्रीधर स्वामी आदि आचार्यों ने कहा है कि ये भागवतम के जो 12 श्लोक है ध्रुव महाराज के, वो भागवतम के अंदर सूर्य के समान प्रकाश दे रहा है। मतलब कितने अच्छे श्लोकों में उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की है। उसमें से ये श्लोक है, योमता प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ताम संजीव यत अखिल शक्ति धराम समूर्ति, है ना। तो कहते हैं कि संजीवती अखिल शक्ति धरा, अखिल शक्ति धरा मीन्स जो सारी शक्तियों को धारण करने वाले हैं। इस दुनिया में सारी शक्तियां हैं वो किसकी है, भगवान की है ना। इन सारी शक्तियों को जो धारण करने वाले हैं वो भगवान ने क्या किया, यो अंत प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसु, वो मेरे अंदर उस शक्ति को प्रदान करके मेरी वाणी को क्या कर दिए, वो जागृत कर दिए। मतलब वो भी सोच में पड़ गए कि मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलने के लिए कैसे, मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता था, लेकिन कैसे बोल रहा हूं मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे। तो ध्रुव महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये मेरे से कैसे हो पा रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि यौंत प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ताम संजीव यति अखिल शक्ति धर स्वधामना। तो भगवान जो अखिल शक्ति को धारण करने वाले हैं, उस भगवान ने उस शंख को क्या स्पर्श किया, उसके अंदर सारी ज्ञान शक्ति और सारी इंद्रियों को दिव्य अवस्था तक पहुंचा दिया। देखिए ध्रुव महाराज ने जो श्लोकों को कहे है ना, वो उन्होंने बहुत सुंदर क्या करते हो, कविता के रूप में गाया है। ये जारे श्लोक है वो कविताएं है ये सारी। हम लोग जब भी किसी के गुण गाते हैं तो कविता बना के नहीं गा सकते, और तुरंत कविता बना के गाना ये हमारे बस की बात, लेकिन ध्रुव महाराज जैसे ही बोल रहे थे तो सारी कविताएं बनते जा रही थी, है ना। तो ये शुद्ध हृदय वाले का ये प्रमाण है, जिसका हृदय बहुत शुद्ध होता है साधना के द्वारा, और वो जब भी कुछ बोलते भी है ना तो सारी क्या बन जाती है, कविताएं बन जाती है। और क्यों जानते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में हम जैसे बात करते हैं ना आपस में, कैसे हो, है वो सब बातें वहां पे नहीं होती है। हम जो हालचाल पूछते हैं ये सारी क्रियाएं वो गान में होती है, गान में होता है ये सब कुछ, समझ रहे। वहां पे कोई बोलता, भगवान के धाम का वर्णन आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य, वहां पे कोई व्यक्ति चलता भी नहीं है, तो आप बोलेंगे चलता नहीं है तो क्या साइकिल लेके जाता है क्या, या फिर सबके पास एक्टिवा होता है, नहीं, वहां पे जितने व्यक्ति हैं सब नाचते नाचते जाते हैं। नाचते नाचते मतलब समझ रहे हैं, जब भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तभी व्यक्ति कैसा एकदम नाचते नाचते जाता है कि नहीं जाता है एकदम। तो उस प्रकार की अवस्था में हमेशा, क्योंकि भगवान का धाम जो है वहां पे कोई टेंशन और दुख है ही नहीं, इसलिए जब व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है तो बिल्कुल खुश होता है, और खुशी अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार एकदम नाचते नाचते ही जाएगा, है ना। तो वहां पे कोई व्यक्ति चलता नहीं है, हमेशा नाचता है, और जब भी बोलता है आप जानते हैं बहुत ही आनंदमय अवस्था होती है, तभी व्यक्ति जो बोलता भी है ना तो वो भी गा के बोलता है कि नहीं। जब भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तभी वो जो बोलेगा वो भी क्या होता है, उसका गाना होता है कि नहीं। कई बार हमने अनुभव किया, जब भी कोई हमारे साथ में स्टूडेंट पढ़ते थे अगर फर्स्ट रैंक आता था ना उसको, ऐसे कभी आता नहीं था, गलती से उसको आ जाता था क्योंकि आगे वाले पीछे हो जाते थे, तो इतना खुश होता था अगर पूछा भी जाए ना तो गा के जवाब देता था। तो ये संसार में देखा जाता है, जब भी व्यक्ति अपनी आनंद की सीमाओं को पार करके जब उसके हृदय में आनंद होता है ना, तभी वो व्यक्ति जो बोलेगा ना वो भी एक गान हो जाता है ना। इस बात को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के अंतिम श्लोकों में कहा है ना। तो वहां पे कोई व्यक्ति चलता भी है तो नृत्य होता है और उनका बोलना भी क्या होता है, गान होता है ना। इस प्रकार भगवान के धाम में क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो सारा वर्णन उन्होंने किया है। तो इस यहां पर ध्रुव महाराज जो बोलने भी जा रहे हैं ना, सारे गान बनते जा रहे हैं, ये गीत बनते जा रहा है, और उसी के अंदर का ये जो प्रथम गीत का जो पहला चरण है उसको यहाँ पे रखा गया है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि यौंत प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तम, मेरी वाणी जो है वो बिल्कुल, अब जानते हैं ध्रुव महाराज इनसे पहले भी कई सारे शब्द बोले थे लेकिन बिल्कुल क्रोध में बोले थे, और उस क्रोधमय अवस्था में बोले हुए शब्द सुन के व्यक्ति का खून खोल जाए, ऐसे शब्द बोल रहे थे। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को ही बोल दिया आपको बोलना है तो बोलो नहीं तो जाओ इधर से, है ना। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो बहुत सुंदर वाणी में ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति की है। अन्यांस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपने मेरे अंदर शक्ति दी इसलिए मैं इन सारे कार्यों को करने में समर्थ हूं, अन्यथा मेरे में ऐसी कोई शक्ति, और स्वाभाविक है भगवान ने हमको भी इन सारी शक्तियों को प्रदान किए हैं इसलिए तो हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन सकते हैं। ये क्रियाएं कब कर सकते हैं, जब तक भगवान ने हमको ये शक्ति दी है। बाकी भगवान अंदर बैठे बैठे कनेक्शन उसके हाथ में है ना, सबसे बड़े वायरमैन तो वही है, अंदर बैठे बैठे कौन सा भी वायर कहीं से भी कट कर सकते हैं, है कि नहीं। होता है कि नहीं, कई बार होता है आंखों से दिखना बंद हो जाता है, और कहीं कहीं भगवान क्या करते हैं, सबसे बड़ा भगवान का जादू आपको समझ में कब आता है मालूम है, जब भी व्यक्ति को भगवान ये जीवा का जो टेस्ट हम खाते हैं उसका टेस्ट आता है ना, भगवान उस वायर को काटते हैं जिस वायर से वो टेस्ट का कनेक्शन होता है। कभी कभी होता है ना खाते हो तो उसको कोई टेस्ट ही नहीं आता है, वो कभी होता है जब बुखार आता है तब, जब व्यक्ति को बुखार आता है ना, फीवर जब आता है तब क्या होता है, वो खाएगा उसको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा उसको, है कि नहीं। तो जो भी खाएगा उसको फीका ही लगेगा, उसको चाहे कुछ भी दो, उसका सबसे फेवरेट चीज भी दिया जाएगा तो उसको क्या लगेगा, फीका, और ज्यादा खा भी नहीं पाएगा, है ना। तो भगवान वो वायर को कटिंग करते हैं, कौन सा, जिसमें टेस्ट का कनेक्शन लगा रहता है ना। तो इन सारे सबसे बड़ा यही काम है, अगर भगवान वो छुड़वा देना तो हमारे हम जो खा पी के हट्टे कट्टे और ये डाइटिंग वाइटिंग करना पड़ता है सब खत्म हो जाएगा। तो इन सारी शक्तियों को भगवान ये जो मेंटेन करते हैं अंदर बैठे बैठे, है ना। इसलिए भगवान सबसे बड़े कौन है, वायरमैन वही है ना, सबसे बड़े इलेक्ट्रिशियन वही है, किसी भी सॉफ्टवेयर को कभी भी उड़ा सकते हैं। आज जानते हैं भगवान जब रात को सोते हैं, एक भक्त बता रहे थे कि भगवान कितना मैनेज, सबसे बड़े मैनेजर, मैनेजमेंट करने वाले इस दुनिया में भगवान है। क्यों मालूम है, क्योंकि जब भी व्यक्ति सोता है तभी उसका जितना भी टेंशन का जो थैली बनता है, पोटला बनता है, उसको क्या करते भगवान ले लेते हैं ना। अरे सारा टेंशन का वो झमेला लेते हैं तभी जाके तो हम सोते हैं, नहीं तो नींद कैसा लगेगा, नहीं तो सो ही नहीं पाएगा ना। उतना टेंशन लेके ये बैठा है कि वो सारा टेंशन रात को भगवान क्या करते ले लेते हैं और सबका तिजोरी में जाके बंद लॉक मारते हैं, और जैसे ही जैसे जैसे व्यक्ति उठते जाते हैं उसको अपना अपना देते जाते हैं, चल भाई तेरा काम चालो। और मान लो भगवान किसी का पोटला उसको दिया और उसका इसका दिया तो वॉचमैन जाके बैठेगा बॉस की सीट पे। तो भगवान सबसे बड़े मैनेजर है, कितना मैनेज करते हैं। देखिए रात को सबका ले लेना टेंशन और रख लेना, और सुबह उठ के सब जैसे उठता है तुरंत उसको दे भी देना, है ना। तो सबसे बड़े मैनेजर इस दुनिया, मैनेज करने वाले कौन है, इसलिए भगवान को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, इस दुनिया को कंट्रोल करने में सबसे समर्थ व्यक्ति भगवान है। ऐसा कोई व्यक्ति कर भी सकता है, कभी नहीं कर सकता, ऐसा मैनेज कोई नहीं कर पाएगा। तो ये भगवान की शक्ति है ना। तो मैं कह रहा था कि भगवान जो है वो सारी शक्तियों को प्रदान, इवन ध्रुव महाराज को दिए ना, हमको भी सारी शक्तियों को प्रदान करने वाले स्वयं भगवान ही है ना। भगवान ने ये प्राण शक्ति हमारे अंदर रखी है, इसी के कारण हम इन सारी कार्यों को करने में समर्थ है। कभी कभी होता है ना, भगवान क्या करते हैं, आधा जो होता है वो बेकार कर देते हैं, पैरालिसिस होता है, तो आधा अंग जो होता है वो क्या होता है, आधा ही काम करता है, है ना, एक ही हाथ चलता है, इसमें भी बोलता भी है तो आधा ही मुंह खुलता है, इधर का तो हिलता भी नहीं है। तो देखिए भगवान बहुत सारी सुविधा उसके पास, तो बहुत टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो भगवान अंदर बैठे बैठे सारी शक्तियों को प्रदान करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर यही है कि भगवान ने हमको इन सारी शक्तियों, सारे हमारे शरीर को चलायमान रख रहे हैं अब तक, है ना। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि नहीं। अगर भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ है वो, है ना। तो भगवान जो है सारी शक्तियों को प्रदान करने वाले, ध्रुव महाराज इस कृपा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते इन सारी चीजों का। इन सारी चीजों का ध्रुव महाराज को अनुभव हुआ कि नहीं प्रभु, ये आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम क्या करते हैं, ये तो हम ही कर रहे हैं ना, भगवान क्या कर रहा है इसमें, है कि नहीं। ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि हमारे अंदर जो कार्य शक्ति है, ये सारी इंद्रियां जो हमारी चलायमान हो रही है, केवल भगवत कृपा से हो रही है, ये ध्रुव महाराज को अनुभव हुआ, लेकिन हमको ये अनुभव नहीं होता है ना, क्योंकि हम उस अवस्था तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। अब तक हम क्या है, प्रकृति के गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुणों के कारण वो क्रियाएं करते रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या मानता है अपने आप को, अहम कर्ता है ना, इस दुनिया का कर्ता, ये सारे कार्यों को करने वाला मैं खुद हूं, अपने आप को कर्ता मानता है। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि आपकी शक्ति न होती तो इतनी तपस्या करने में भी मैं खुद समर्थ, तो 7-5 साल की उम्र में इतनी तपस्या कर लेना, अभी निर्जला एक दिन आ रहा है ना, आ रहा है ना, अब से चिंता में, हम लोग तो कितने दिन से नहीं, हमसे तो होगा नहीं, और उस दिन अगर धूप निकल गया, मान लो बारिश नहीं हुआ, तब तो हालत खराब, तो कितने दिन पहले से हमको इन सारी चीजों को चिंता, एक दिन भूखा रहना हमारे लिए हालत खराब होती है। ध्रुव महाराज एक एक हफ्ता, एक महीना कंटिन्यूस न खाए न पिए न सांस लिए, एक महीने तक इस, तो ध्रुव महाराज की तपस्या को देख के भगवान खुश हुए, उस मंत्र जप के प्रभाव से भगवान बहुत खुश थे, और उसने अंत में यह अनुभव भी किया, है ना, इस बात को अनुभव किया, हम भी तपस्या करेंगे तो हमको भी अनुभव होगा आगे जाके कि नहीं, भगवान की कृपा से ये शरीर, और सबसे ज्यादा अनुभव कब होता है मालूम है, जब हम बेड पे जाते हैं ना, तब बीमार होके, ये बेड नहीं हॉस्पिटल वाला बेड, वहां पे जाते तब अनुभव होता है, नहीं इसको चलाने वाले भगवान है कि नहीं। लास्ट में डॉक्टर भी बोल देता है, क्या बोलता है, अब हम कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में, आप भगवान से प्रार्थना करो, यदि वो चाहे तो बचा दे, बाकी कोई किसी के हाथ में, तो लास्ट में सारे कागजात किसके हाथ में चले जाते हैं, अभी वो संभाल ले तो बच सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, है ना। तो लास्ट अंतिम जो निर्णय दाता कौन है, भगवान, है ना। तो ध्रुव महाराज इस बात का अनुभव कर पाए, लेकिन इस बात का अनुभव हम सबको भी करना चाहिए कि भगवत कृपा से, भगवान की कृपा है इसलिए हमारा ये जो शरीर कार्य कर रहा है। अगर भगवान ही हमारे इस शरीर में शक्ति को प्रदान करने वाले हैं, तो इन सारी शक्तियों को कहां लगाना चाहिए, किसकी सेवा में। मान लो हम आपको शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करोगे, तो इस शक्ति को मैं दूंगा क्या, दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। स्वाभाविक है, जिस शक्ति, हमारी शक्ति का आप उपयोग करते हो और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो, तो क्या होगा, स्वाभाविक कि किसी का भी, है ना। हालांकि भगवान ऐसा दिमाग खराब नहीं करते, भगवान का दिमाग कभी खराब नहीं होता, भगवान फिर भी, चलो बेटा है जाने दो, भगवान फिर भी माफ करते हैं, है ना, उसको चांस देते हैं कि आप प्रयास करो, है कि नहीं। तो हमारे अंदर भी सारी शक्तियों को प्रदान करने वाले कौन है, और जिसके कारण हम इन सारी शक्तियों को लेकर भी हम क्या करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए यूज करते हैं ना, इन सारी शक्तियों को हम अपने ही परिवार के लिए उसको खिलाना उसको पिलाने की कितनी मेहनत करना है, इतना मैनेज करना है, सब कुछ हम अपने लोगों के लिए, अपना जिसको मान लिया है उसके लिए मेहनत करता है। लेकिन इन सारी शक्ति के विषय में शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे। मतलब यावत जीवो निवसति देहे, जब तक जीवात्मा अर्थात भगवान जो है, जब तक उस शक्ति को हृदय में रखते हुए, भगवान शक्ति देते हैं आत्मा को और आत्मा इस हृदय यहां पर बैठे बैठे शरीर को क्या करता है, चलाते रहता है कि नहीं। तो यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे, जब तक जीवात्मा इस शरीर में है तब तक हमारे घर वाले हमको पूछते हैं, कुशलम पृच्छति तावत गेहे, तब तक पूछेंगे भाई कैसे हो, जब मिलेंगे तो पूछेंगे ना कैसे हो, खाया क्या किया है ना, सब कुछ। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमको पूछते हैं, और जैसे ही शरीर से प्राण शक्ति जब चली जाती है तभी तभी कोई भाव भी देता है क्या, घर में जो बूढ़े हो जाते हैं उसकी हालत क्या होती है, है कि नहीं। गतवति माये देहा पाए भारिया बिभ्यति तस्मिन काये, जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं अर्थात है ना आत्मा जैसे ही शरीर से निकल जाता है तो क्या होता है, उसकी भारिया जो है अर्थात उसकी जो अर्धांगिनी पत्नी है वो ही उस शरीर से फिर है ना आजीवन उसकी सेवा में लगी रही। लेकिन जैसे ही उस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो फिर उसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो बांस मारेगा इधर, अब तक बांस नहीं मार रहा था क्या होता है कि नहीं। जब तक इस शरीर के अंदर शक्ति है ना, जीवात्मा शक्ति है, तब तक सब लोग पूछेंगे कैसे हो क्या है हाय हेलो सब कुछ। लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो भगवत कृपा से जब तक इस शरीर में हमको भगवान ने शक्ति प्रदान किए हैं तो शक्ति दाता का ये एहसान हमको मानना चाहिए। और जिसने शक्ति दी है वो भगवत गीता में ये मांग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कोई डिमांड नहीं करते, भगवान ने ये मांग भी किया है कि आप जो है वो ये सारी शक्तियां मुझे, आप जो करते हो सब मेरे लिए करो, आप अपने लिए मत करो, ये सब आपने अपने लिए करते हो तो क्या होगा, कर्म के बंधन में फंस के आगे जाके बहुत दुखी हो गए। अगर उन सारे कार्यों को आप अगर मुझे अर्पित करते हो तो आपको सारे पापों से छुड़ा दूंगा मैं, है ना, आप चिंता मत करो, इन सारी जिम्मेदारियों को मैं लेता हूं। भगवान इन वचन देते हैं कि आप चिंता मत करो, इन सारी जिम्मेदारियों को मैं कर लूंगा, लेकिन आप जो करते हो केवल मेरे लिए करो, है ना। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यासी कौनते यद तत् करुषो मद अर्पण, आप जो करते हो सब मुझे अर्पण करो, है ना। लेकिन फिर भी हमारा स्वभाव जो है वो नहीं कर पाते हैं, है ना, करते हैं कितना परसेंट, परसेंट में भी नहीं आ रहा है, है ना, परसेंटेज निकालने पे वो जीरो माइनस में चला जा रहा है सब कुछ, है ना। तो ये हमारी हालत है ना, भगवान ने इसलिए एक भक्त हुए जिसका नाम जाही, जिसने हमको ये शरीर में शक्ति दिया उन्हीं को हम क्या कर दिए, भूल गए, है ना। ऐसा कुछ तो हमने सुना था को, राधा कृष्ण प्रभु एक बार बॉम्बे में आए थे, बोरीवली में उन्होंने कथा की है, तब उन्होंने बहुत सुंदर बात बताए थे। उन्होंने कहा था कि जाही तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी, हम लोग कौन है, हम लोग नमक हरामी है, नमक हरामी मतलब जानते हैं ना, जिसका नमक खाया उसका ही ना? हम सब लोग क्या है, इन सारी शक्ति भगवान की है, उन सारी शक्तियों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सारी शक्ति भगवान, इस शरीर में भी शक्ति भगवान देते हैं और ये सारी वस्तुएं है वो भी किसकी है, भगवान की है ना। क्यों, भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रभुते, सारी शक्ति इन सारे वस्तुओं को देने वाला मैं हूं, है ना, इन सारी वस्तुओं भगवान की है और इस शरीर में शक्ति देने वाले भी भगवान है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को हम यूज भी करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और फिर भी उसको हम क्या करते, याद भी उसको कैसे हो ये भी नहीं पूछते हैं। तो इससे बड़ा नमक हरामी कोई हो सकता है क्या, इससे बड़ा नमक हरामी कोई नहीं हो सकता, है ना। इसलिए कम से कम नमक हराम बोलो तो मत बनिए, क्योंकि बनना है क्या आपको, तो स्वाभाविक है। देखिए, भगवान ने अगर हमको सब कुछ दिया है तो इन सारी शक्तियों को भी उनकी ही सेवा में हमको लगाना चाहिए ना, क्योंकि यही सारे वेद और शास्त्रों का सार है ना। जिसने दिया है उसको, है ना, तेरा तुझको अर्पण, है ना, ये तुम्हारा है और हम ये सारी चीजें हम आपको ही अर्पित करते हैं, है ना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ध्रुव महाराज और भी कई सारे सुंदर शब्दों में, जैसे प्रभुपाद महाराज ने और भी आगे भक्ति विनोद ठाकुर के एक भजन का दृष्टांत दिए हैं, इन सारी बातों का ज्ञान फिर भी हमको हो नहीं पाता है। भले ही ये सारी शक्ति भगवान हमको देते हैं, अभी हम लोग सुनते हैं तो अनुभव भी करते हैं, है ना, अभी सुने तो हमको थोड़ा फ्रेश है कि नहीं, सब कुछ देने वाले भगवान है, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन जैसे ही यहां से बाहर जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, फिर से चालू है ना, ये हमारी हालत है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का दृष्टांत, एक भजन का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा, जीव जागो गौरा चांद बोले, है ना, कत निंद्रा जाओ माया पिशा चिरा कोले, कब तक इस अज्ञान रूपी अंधकार में जीवात्माएं सोते रहोगे, है ना, कब तो विचार करो कि इन सारे जागने का अर्थ क्या है। जागने का अर्थ है कि जो सत्य है उसको हमेशा विचार अपने बुद्धि में रखा जाए, उसको जागी हुई अवस्था। जब तक जीव माया के बंधन में रहता है तब तक वो सोया हुआ है ना। भले ही हमारा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कितना भी हमारा सैलरी है ना, कितना भी हम कमाते हैं, किंतु फिर भी वो हमारी अज्ञानमय अवस्था है ना। जैसे स्वप्न का मैंने पहले कहा, वो स्वप्न में कितना भी कमाए कुछ भी करे उसका क्या वैल्यू है ना। तो ये जो है वो अज्ञानमय अवस्था है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे गौरा चांद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे जीव जागो जागो, कब तक इस अज्ञान रूपी माया की पिशाची के गोद में सोए रहोगे आप लोग, कुछ तो विचार करो, है ना। भजी वे बोलिया ऐसे संसार भीतर है, भूलिया रही लो तुम्हें अविद्यार भरे। भगवान को हम लोग क्या वचन देके, भागवत में वर्णन है, तीसरे स्कंद में कपिल भगवान उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जीवात्मा जब माता के गर्भ में होता है तभी बहुत दुखों को अनुभव करता है, लेकिन जब दुखमय अवस्था में होता है, बहुत दुख होता है, असह्य जब दुख हो जाता है ना, तब जीवात्मा भगवान को क्या प्रार्थना करता है और क्या वचन देता है, उसको भागवत में बहुत सुंदर लिखा गया है। वो भगवान को वचन देता है कि प्रभु जैसे आप मुझे यहां से छुड़ा दो, बस अब जैसे ही यहां से छुटा कि मैं आपका भजन करूंगा, आपको मैं वचन देता हूं, है? उस गर्भ की यातना से छूटने के लिए भगवान को वचन दिया क्या, कि मैं यहां से जैसे निकलूंगा बस हरे कृष्ण जप के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, है कि नहीं। लेकिन भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतर है, भजीबा आपका भजन करूंगा, लेकिन इस संसार में जैसे आया भूलिया रही लो तुम्हें अविद्या मरे, अविद्या के कारण सारा क्या हो गया, भूल गया, अभी वो अपनी धुन में घूम रहा है ना। किसी को वचन देने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसके सामने ही नौटंकी करे तो हालत खराब कर देंगे ना। लेकिन भगवान फिर भी ऐसे नहीं है, हालत खराब नहीं करते, फिर भी भगवान सब कुछ देते हैं, ले बेटा और ले, है ना। फिर भी उन सारी शक्तियों को अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा तो क्या होगा। हाँ, भगवान ने व्यवस्था बना के रखा है, टेंशन मत लो, सबके लिए व्यवस्था तो है ही है, है कि नहीं। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग जाके आए हैं, अनुभव तो सबको है ना। भगवान ने भी पुलिस वाले रखे हैं, समझ रहे हैं। भगवान को हमने जो लेटर लिख के दिया था कि देखो भाई बाहर जाऊंगा आपका भजन करूंगा, उसके अलावा और कुछ, तो भगवान के पास वो हमारा लिखा पड़ा है, और आगे जाके केस करेंगे भगवान, जब ये शरीर छूटेगा तभी वही कागज उसके क्या क्या होते, उसके यमराज, यमराज उसके क्या लगते हैं, यमराज जी के पास वो लेटर भेजेंगे, चित्रगुप्त तो फिर वो पढ़ के उसको सुनाएंगे ना, है ना। तो यमराज जी के पास भेजेंगे, और यमराज जी के पास भेज के क्या करेंगे, देखो भाई कंप्लेंट लिखाएंगे ना, तो देखो ये व्यक्ति ने मेरे को कमेंट दिया था लेकिन अभी कर नहीं रहा है, तो फिर उसकी वहां पे ट्रीटमेंट होता है फिर, है कि नहीं। तो ये व्यवस्था भगवान ऐसे बना के, नहीं करते तो उसको कोई लॉस थोड़ी है क्या, नहीं करते तो हमारा ही लॉस है। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रही लो तुम्हें अविद्या भरे, तुम्हारे लिए तो हमी है नो अवतार। फिर भी बीच बीच में भगवान याद भी दिलाते, ऐसा नहीं कि भगवान को गर्भ में वचन दिया था तो फिर भगवान याद ही नहीं दिलाएंगे, ऐसा नहीं, बीच बीच में भगवान याद भी दिलाते हैं उसको कि देखो भाई आपने हमको वचन दिया था है ना, तो तुम्हारे लिए तो आमी हैनो अवतार, तुम्हारे लिए मैं अवतार लेके अब समझा भी रहा हूं है ना। भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से सिखाया भी जाता है, कभी कभी भगवान मंदिर में ला के इस प्रकार से उसको याद भी दिलवा देते कि देखो भाई हमने वचन दिया था तो आप उस वचन को पालन करिए है ना। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तो फिर आमे बिना भगवान फिर भी कहते कि देखो भाई समझाते, देखिए पिता होते वो पुत्र को क्या करेंगे, समझाएंगे, कितना भी गलती करे तो उसको बार बार उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे है ना। तो आमे बिना बंधु आ रखी अच्छा तुम्हारे, भगवान कहते कि मेरे बिना तुम्हारा इस दुनिया में और कोई है ही कौन, सबसे बड़ा बंधु मैं ही हूं है ना, क्योंकि ये सारे पति पत्नी है जो सब कुछ बना के रखा वो सब छोड़ देने वाले तुमको, कब तक साथ में रहेंगे, मृत्यु जब तक तुम्हारे पास नहीं आती है तब तक, जैसे ही मृत्यु तुम्हारे पास आई सब लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुमको अकेले जाना है और तभी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा है ना। यदि जीवात्मा नरक में भी जाता है तो भगवान उसके साथ में रहता है, ऐसा नहीं कि नरक में जीवात्मा गया तो भगवान वहां से चले जाते कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं, भगवान नरक में भी उस जीवात्मा के साथ में रहते हैं, तो यातना भोगता है तभी भी भगवान उसके साथ में साथ देते हैं है ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ही सबसे बड़ा मित्र हूं, तो आप क्या इधर उधर घूम रहे हो है ना, मेरी और ध्यान दो। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, इस भव जो रोग तुमको लगा हुआ है ये अज्ञान को नाश करने के लिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहता, तुम अपने दिए हुए वचन को भूल जाते हो, इसलिए उस बार बार भूलने की आदत को छुड़वाने के लिए तुम्हारे लिए औषधि भी लाया हूं। क्या है वो औषधि, भगवान का नाम एनेची औषधि है ना, ये है औषधि, लो आप, क्या वो हरि नाम महामंत्र लो तुम, अगर तुम मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा, ऐसे ही नहीं दूंगा, तुमको अगर याद रखना है उसके लिए दवाई चाहिए तो मैं तुमको दूंगा है ना। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लई ल मांगिया। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरण में गिर के, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के उनसे क्या करते हैं कि वही मंत्र हमको दे दो कि हम कभी भूले नहीं, आपके उपकारों को हम कभी न भूले, ऐसी दवा हमको दे दो। और वो दवा क्या है जानते हैं, भगवान का नाम है ना। भगवान का नाम जो है वो हमको हमेशा याद दिलाता है कि भगवान हमारे वास्तविक मित्र है ना, उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण इस प्रकार ग्रहण करता है तो भगवान ने भगवत गीता में भी अंत में वचन तो दिए ही है ना, कौन सा है, सर्वधर्मान, आप धर्म के अर्थ जानते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब स्वामीनारायण धर्म छोड़ के, कौन सा धर्म, कौन सा धर्म, सब धर्मों को छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ, उसका क्या अर्थ होता है, देखिए एक पिता का धर्म है पुत्र का पालन करना, एक पिता पति का धर्म है पत्नी को संतुष्ट रखना, पत्नी का धर्म है अपने पति को संतुष्ट रखना, उनकी सेवा करना, ये सारे क्या है, धर्म है। तो कुछ पिता का पुत्र के प्रति आपस में कई सारे धर्म, इसको धर्म कहा जाता है, कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, टेंशन मत लो। तो बोलेगा कि नहीं यार, अगर पत्नी को ठीक से नहीं संभालेगा और पाप लगेगा वो दुखी रहेगी, तो भगवान कहते आप उसका चिंतन मत करो, आप केवल मेरी शरण में आओ और मेरा नाम जप करो, बाकी सारा टेंशन मेरा है। बोलेगा नहीं पाप लगेगा यार, इतना सारा छोड़ के अगर बेटे के ध्यान नहीं देंगे सब कुछ होगा, उसका ध्यान नहीं, ठीक से पढ़ाया लिखा नहीं है, सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो फिर हमको पाप लगेगा। अर्जुन भी मान लो उस तर्क, अर्जुन तो नहीं करने वाला था, हम लोग करने वाले, इसलिए भगवान ने पहले से ऐसा ही जवाब दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, बाकी आप टेंशन मत लो, माम एकम शरणम व्रजा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा सुचर, तुम्हारे सारे पापों को छोड़वा दूंगा। और भगवान बोलते हैं कि मा सुचर मीन्स, मतलब क्या होता है, डरो मत, टेंशन मत लो आप, मैं हूं आपके साथ है ना। भगवान वचन देते, मान लो कि अगर कुछ आड़ा टेढ़ा होता है, भगवान बोलते मैं हूं ना, वो सारा मैनेज मैं कर लूंगा, आप केवल मेरा नाम जपो है ना, मेरा नाम जपोगे तो सारी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगा है ना। तो भगवान इस बात का हमको क्या देते हैं, वचन भी देते हैं है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो बहुत ही इससे व्यक्ति को लाभ होता है ना। और उनकी शरण लेने का अर्थ है कि उसके नाम की शरण ली जाए, है ना। भगवान का शरण लेने का क्या अर्थ होता है? भगवान की शरण ले, है ना। भगवान का शरण अर्थात भगवान के नाम का शरण ली जाए। एक भक्त इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज नाम एकम शरणम ब्रज। किसके? नाम एकम शरणम ब्रज, केवल नाम की शरण में जाओ। भगवान नाम की शरण में जाओगे तो सारे पापों से चिंताओं से मुक्त कर देंगे। भगवान का जो नाम है वो सारी चिंताओं से क्या कर देता है? हमको मुक्त करता है, है ना। जैसे विभीषण जी किसकी शरण में गए थे? राम की शरण में गए, है ना। राम की शरण में गए तो राम जी ने क्या कहा? आ जाओ, है ना। राम जी ने कहा कि आगे जाके तुमको मैं लंका का राजा बनाऊंगा, है ना। उसको वचन दिए कि तुमको मैं लंका, हालांकि उसको लंका जीतने के प्रति राम को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो सीता अपनी अपनी पत्नी से उनको लाना था, पत्नी को लाना था। तो बोला कि अगर हम लंका को जीतेंगे तो वो किसको दे देंगे? हम आपको दे देंगे, है ना। तो भगवान ने उसको, जो कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, बारिक की सारी जिम्मेदारियों को कौन निभाता है? भगवान, है ना। सारी जिम्मेदारी भगवान अपने सिर पे लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसको पाप लगेगा, है ना। क्योंकि भगवान उन सारे कर्तव्यों के जो पाप भी लगते हैं उसको कौन संभाल लेते हैं? भगवान, है ना। और फिर भी भगवान ने कहा है कि अगर अनन्य भाव से कोई व्यक्ति मेरी भक्ति भी करेगा तो जो है योग क्षेम वहामी अहम। योग का अर्थ होता है जो चाहिए उसको देना, और क्षेम का अर्थ होता है जो हो उसकी रक्षा करना। इन सारी क्रियाओं को कौन करता है? भगवान, मैं करता हूं। लेकिन खाली तकलीफ यह है कि हम उसकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। और शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि कम से कम व्यक्ति को 16 माला जप करना। शरण ग्रहण का क्या अर्थ होता है? 16 माला करना मतलब भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हम लोग। 16 माला करने का मतलब क्या होता है मालूम है? कम से कम हम इतने गर्व से ये बोल सकते हैं कि मैं नमक हराम नहीं हूं, समझ रहे। 16 माला जो नहीं करता है ना, वो नमक हराम है। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि जितने हम सांस लेते हैं उतने सांस के ऊपर कम से कम भगवान का नाम आ जाए ना, तो वो जो है सारे ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं। बाकी अगर हम भगवान के नाम 16 माला जप नहीं करते तो निश्चित है, अगर कोई 16 माला जप करता है मतलब 26,000 से अधिक उसमें भगवान के नाम आ जाता है, है ना। उसमें 16 माला का अर्थ होता है उसमें 26,000 से अधिक भगवान नाम आ गए। और जैसे ही व्यक्ति 26,000 से अधिक, और जीवात्मा जो एक व्यक्ति होता है वो कितना सांस लेता है? मैक्सिमम 26,000। कभी कभी वो बीमारी के कारण कोई मान लो फटाफट खींचने भी लग जाए तो भी कितना होगा? 26,000 से ज्यादा नहीं जा सकता है, है ना। तो सबसे ज्यादा 26,000 कोई व्यक्ति सांस भी लेता है तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि उसके सांस सांस पे क्या हो जाएगा? भगवान का नाम आ जाएगा। जो व्यक्ति 16 माला तो कम से कम गर्व के साथ इतना बोल सकता है क्या? उपकार नहीं कर रहा है, 16 माला करके कोई उपकार नहीं कर रहा है। कम से कम ये क्या हुआ? एक समझौता हुआ, चलो मैं इतना तो कर दिया, हमसे ज्यादा तो नहीं हो पा रहा लेकिन 16 माला। तो इस्कॉन में प्रभुपाद महाराज ने यह नियम दिया है कि कम से कम 16 माला करना है, ज्यादा से ज्यादा 16 माला नहीं है, कम से कम व्यक्ति को 16 माला, उससे ज्यादा होता है तो और अच्छा है, है ना। तो सभी से हम भी निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग भगवान के नाम का कम से कम 16 माला का जप कीजिए। 16 माला करेंगे तो और अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आपको नहीं, वो तो है ही है, उसमें बोलने वाली बात क्या है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर अपने आप के विषय में आपको ही सोचना होता है, है ना। नहीं कर पाएंगे तो, किंतु हम जो है वो काप से केवल निवेदन कर सकते हैं, है ना। भगवान भी जब गीता में उपदेश देते तो ऐसा नहीं अर्जुन तो ऐसा करी, ऐसा नहीं, समझा सकते हैं। समझाना हमारा काम है, करना न करना ये सभी लोगों के हाथ की बात है, अपने अपने हाथ की बात है, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?